नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। देश की सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को अगली दो तिमाहियों में जनरेटिव एआई आधारित सौदे होने की उम्मीद है। हालांकि इनका आकार बहुत बड़ा नहीं होगा। टीसीएस के सीईओ और प्रबंध निदेशक के कृति वासन ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी। उन्होंने पीटीआई भाषा को एक साक्षात्कार में बताया कि ये सौदे $1 अरब से अधिक के नहीं होंगे। कृति वासन ने कहा, प्रत्येक संगठन कई सौदे करेगा, लेकिन जनरेटिव एआई में बहुत बड़ा सौदा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि इस समय हर संगठन नई तकनीक को अपनाना चाह रहा है। उन्होंने कहा कि टीसीएस इस क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव की तैयारी कर रही है। कंपनी ने बुधवार को जनरेटिव एआई के बारे में 1,00,000 सहयोगियों को प्रशिक्षित करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि संगठनों पर बड़ा प्रभाव तभी दिखाई देगा जब वे व्यापक कार्यक्रम शुरू करेंगे और प्रायोगिक आधार पर कुछ कार्यक्रमों का बड़ा लाभ दिखाई नहीं देगा। उपभोक्ताओं के ऑर्डर पर उनके पास खानपान का सामान पहुंचाने वाले ऑनलाइन मंच स्विगी ने लिंक लॉजिस्टिक्स लिमिटेड का अधिग्रहण करने का पक्का करार किया है। स्विगी ने हालांकि सौदे की कीमत का खुलासा नहीं किया। स्विगी ने बृहस्पतिवार को बयान में ये जानकारी दी। इस सौदे के बाद से स्विगी ने प्रौद्योगिकी आधारित वितरण मंच के साथ देश के व्यापक खुदरा बाजार में पदार्पण किया। स्विगी ने कहा कि अधिग्रहण के बाद भी अपने सह संस्थापक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी शेखर भेंडे की अगुवाई में स्वतंत्र कारोबार कंपनी के तौर पर काम करती रहेगी। लिंक देश के प्रमुख 8 शहरों में लगभग 1,00,000 खुदरा स्टोर के नेटवर्क के माध्यम से प्रमुख दैनिक उपयोग का सामान करने वाली कंपनियों को खुदरा बाजार में विस्तार करने में मदद करता है। नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी गोल्डी सोलर ने बृहस्पतिवार को बताया कि वह VAMA ऑन ग्रिड इन्वर्टर पेश करने के साथ बिजली भंडारण समाधान कारोबार में प्रवेश कर रही है। गोल्डी सोलर ने एक बयान में कहा, कंपनी ने स्मार्ट इन्वर्टर कारोबार में प्रवेश करते हुए VAMA ऑन ग्रिड श्रृंखला को पेश किया, विशेष रूप से ऑन ग्रिड अनुप्रयोगों के लिए बनाया गया। यह इन्वर्टर एकल फेज और 3 फेज में उपलब्ध है। गुजरात स्थित कंपनी 5,000 करोड़ के निवेश के साथ अपनी विनिर्माण क्षमता को 2.5 गीगावाट से बढ़ाकर 6 गीगावाट करने की तैयारी कर रही है। शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी बायजू ने अपग्रेड के पूर्व प्रमुख अर्जुन मोहन को अपने अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ नियुक्त किया। सूत्रों ने पीटीआई भाषा को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बायजू रविंद्रन समूह के सीईओ बने रहेंगे और मृणाल मोहित भारतीय कारोबार के प्रमुख बने रहेंगे। इस घटनाक्रम के बारे में पूछने पर बायजू ने टिप्पणी से इनकार किया। मोहन ने पिछले साल दिसंबर में अपग्रेड से इस्तीफा दिया था। जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बिजली प्रणाली में अधिक नवीकरणीय ऊर्जा को जोड़ना भारत के लिए महत्वपूर्ण है। इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस ने ये बात कही। IEEFA ने अपनी ताजा रिपोर्ट में देश की बिजली प्रणाली में स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय भी सुझाए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि उत्सर्जन में कटौती के लिए भारत को नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने की जरूरत है। इसमें कहा गया, भारत 2030 तक अपने उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए तेजी से नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को जोड़ रहा है और देश को अपनी बिजली प्रणाली में स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने की जरूरत है। IEEFA के ऊर्जा विश्लेषक और रिपोर्ट के लेखक चरित कोंडा ने कहा कि भारत के लिए जरूरी है कि वह जलवायु संबंधी चिंताओं को दूर करने तथा बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दे। उन्होंने कहा कि 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन पर आधारित बिजली की स्थापित क्षमता की हिस्सेदारी को 50% तक बढ़ाना संभव हो सकता है और इससे उत्सर्जन में महत्वपूर्ण कटौती होगी। HDFC बैंक ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि उसने पायलट आधार पर जारी सेंट्रल बैंक डिजिटल रुपए से 1,00,000 से अधिक ग्राहकों और 1.7 लाख से ज्यादा व्यापारियों को जोड़ा है। बैंक ने आपसी लेन देन को सुलभ बनाने के लिए रुपया मंच के साथ UPI QR कोड भी चालू किया। CBDC केंद्रीय बैंक की तरफ से जारी मुद्रा का डिजिटल रूप है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले साल नवम्बर में थोक खंड में पायलट आधार पर सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा कार्यक्रम शुरू किया था। दिसंबर में इसे खुदरा लेन देन के लिए पेश किया गया था। RBI के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि मौद्रिक प्राधिकरण साल के अंत तक डिजिटल रुपए में लेन देन को 5,000 से 10,000 प्रतिदिन से बढ़ाकर 10,00,000 प्रतिदिन करने की योजना बना रहा है। L&T ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने भारत के चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 के लिए विभिन्न पुर्जों की आपूर्ति की है। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि इस मिशन के लिए मध्यखंड और नोजल बकेट फ्लेंज जैसे पुर्जों का विनिर्माण पवई स्थित उसके संयंत्र में किया गया। इसके अलावा ग्राउंड और फ्लाइट एम्बलिकल प्लेट जैसे घटक कोयम्बटूर स्थित कंपनी के एरोस्पेस विनिर्माण संयंत्र में तैयार किए गए। L&T डिफेंस के कार्यकारी उपाध्यक्ष और प्रमुख AT रामचंदानी ने कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र भारतीय उद्योग के लिए खुल रहा है और हम भविष्य के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में बड़ी भूमिका निभाने के लिए इसरो के साथ मिलकर काम करेंगे। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।